ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर के गांदरबल में सोनमर्ग सुरंग का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोनमर्ग में एक जनसभा को भी संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर आधुनिक अवसंरचना का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने सुरंग परियोजना का निरीक्षण भी किया। सोनमर्ग सुरंग से गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच यात्रा समय घटकर केवल 20 से 25 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन और हर मौसम में संपर्क सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे पर्यटन के साथ जम्मू कश्मीर में स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों से देश संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री तौफीक बिन फवजान अल रबिया के साथ हज समझौते 2025 पर हस्ताक्षर का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस समझौते की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए बेहतर तीर्थयात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दोनों देशों ने हज 2025 के लिए भारत से 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा तय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी हज यात्रियों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरल इस्लाम को तलब किया। उन्हें बताया गया है कि सीमा पर बाड़ लगाने सहित सभी सुरक्षा उपायों के संबंध में भारत ने दोनों सरकारों के बीच सभी प्रोटोकॉल और समझौतों का पालन किया है। भारत ने सीमा पर आपराधिक गतिविधियों, तस्करी, अपराधियों की आवाजाही और अवैध व्यापार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि उत्तरी सीमाओं पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर है। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण भारतीय सेना की प्राथमिकता है। नई दिल्ली में आज सेना के वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में जनरल द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है और ये आतंकवाद से पर्यटन की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में 1,50,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 45 दिन चलने वाले इस महाकुंभ के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बुधवार को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2024 स्थगित कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि उसे 15 जनवरी को पोंगल, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के कारण परीक्षा स्थगित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा त्रिवेणी मार्ग पर आयोजित प्रदर्शनी परिसर में एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये प्रदर्शनी जन भागीदारी के माध्यम से जन कल्याण तथा पिछले एक दशक में भारत सरकार की उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं पर आधारित है। आज पहले ही दिन हजारों लोग प्रदर्शनी देखने पहुंचे। ये डिजिटल प्रदर्शनी 26 फरवरी तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा और भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल के साथ खो खो विश्व कप 2025 की औपचारिक मशाल जलाई, जो खेल भावना, एकता और भारत के पारंपरिक खेल के वैश्विक उत्सव का प्रतीक है। खो खो विश्व कप 2025 का आधिकारिक उद्घाटन आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ। खो खो विश्व कप का पहला मैच भारत और नेपाल के बीच जारी है। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया। इसमें 20 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।